लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संघर्षों की स्थिति में हम ध्रुवीकरण और लोक लुभावनवाद के खिलाफ संवाद और मैत्री के साहसी निर्माता बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कांस्टेंट लेबन्स एवं छिटर नागपुर में कैथोलिक कलीसिया की शुरुआत के बारे चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने सुना था कि फादर लेबन्स ने 6 महीने में 4 महीने टूर में बिताए। गर्मी ऋतु के चिलचिलाती धूप में वे हमेशा घोड़े पर सवार होकर दौरा करते थे। एक दिन में 8 से 10 बार उपदेश देते थे। कई सप्ताहों तक बाजार से खरीदकर रूखा सूखा भोजन किया और कई रातें पेड़ के नीचे बिताए। ऐसी स्थिति में उनका स्वास्थ्य रहना बिल्कुल असंभव था। आज हम देखेंगे कि फादर लेबन्स अपने स्वास्थ्य के सुधार के लिए क्या उपाय अपनाते हैं। तो आइए आगे सुनते हैं। 5 जून को 12वें से रांची लौटने के बाद फादर लेबन्स को तत्काल एवं सावधानी पूर्वक जांच की अति आवश्यकता थी। बुखार, छाती में तकलीफ और दर्द के साथ सूखी खांसी के कारण वे काम करने में असमर्थ थे, किंतु डेरा के नजदीक रहकर आराम करना भी उनके लिए मुश्किल था। रांची में 6 सप्ताह तक आराम करने के बाद छाती दर्द के कारण बिगड़ती हालत पर डॉक्टर से सलाह लेने हेतु 15 जुलाई को कलकत्ता रवाना हुए। डॉक्टर रॉय ने उन्हें जांच के बाद बीमारी को पूरी तरह प्रकट किए बिना लंबे समय तक आराम करने की सलाह दी। वहां से एक फादर और एक ब्रदर के साथ फादर लेबन्स दार्जिलिंग के लिए निकले और 28 जुलाई को अपने गंतव्य स्थान पहुंचे। रास्ते पर वे खारसों में रुकते हुए पार हुए, जहां उनकी मुलाकात अपने पूर्व सुपीरियर फादर मोटेट से हुई। दार्जिलिंग सिक्किम, पूर्णिया और संथाल परगना को 1887 में बंगाल मिशन के साथ जोड़ दिया गया था। पोप ने इन क्षेत्रों को पश्चिम बंगाल के साथ इसलिए जोड़ दिया था ताकि मिशनरी समतल भूभाग की अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए इन क्षेत्रों में शरण ले सकें। मिशनरियों ने दार्जिलिंग और खारसियों में 2 कॉलेज स्थापित किए थे। इन दोनों स्थानों में मिशनरी जरूरत के समय आराम करने आते थे। फादर लेबन्स 4 सप्ताह दार्जिलिंग में ठहरे। उसके बाद संत मैरीज खारसियों गए, जहां का वातावरण उनके लिए अनुकूल था, किंतु उनके स्वास्थ्य में अधिक सुधार नहीं हुआ। उन्होंने अपनी बीमारी के बारे अपने रिश्तेदारों को बतलाते हुए अपनी बहन को एक पत्र लिखा। कुछ समय से मेरे गले में दर्द है और मैं बहुत खांस रहा हूँ, इसलिए अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु यात्रा पर हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि गले में दर्द अत्यधिक काम करने के कारण हो रहा है। चाहे जो भी हो, खांसी बहुत खराब है। इतना होने पर भी फादर लेबन्स निराश नहीं हुए, न ही किसी तरह की शिकायत की। उन्हें काम पर लौटने से पहले पर्याप्त आराम करने के लिए कहा गया था। शुरू में उन्होंने रुकने और देखने का निश्चय किया तथा इन कड़वे दिनों में अपने लिए किए गए करुणा के कार्यों की याद की। दार्जिलिंग से उन्होंने मौसलेदे की मदर सुपीरियर को एक पत्र लिखा और बतलाया कि मैं 4 जून से ठीक नहीं हूँ और इस समय रांची मिशन जहाँ काम करता हूँ वहाँ से काफी दूर में रह रहा हूँ। पिछले 2 सप्ताह से मैं दार्जिलिंग में हूँ ताकि मिशन क्षेत्र में काम करके मैं जो थकान महसूस कर रहा हूँ उससे आराम पा सकूँ। उन्होंने मदर से आग्रह करते हुए कहा कि धर्म बहनों और बच्चों को छोटा नागपुर मिशन एवं मेरे लिए प्रार्थना करने हेतु प्रोत्साहित करना ना छोड़ें, ताकि ईश्वर हमारे कार्यों पर आशीष प्रदान करें और बहुत सारी आत्माओं को बचाया जा सके। फादर लीबस जितना अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर रहे थे, उतना अधिक छोटा नागपुर मिशन के लिए चिंतित थे और थोड़ी सुधार होने पर वे तुरंत रांची लौटना चाहते थे। उन्होंने रांची स्थित लोरेटो धर्म बहनों को लिखा, मैं जल्द ही वापस लौटने की उम्मीद कर रहा हूँ। मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, मैं थोड़ा चल सकता हूँ और पौत्र मिसा भी अर्पित कर सकता हूँ। एक शब्द में कहें तो चंगा हो गया हूँ। मेरा केवल शरीर यहाँ है जबकि दिल रांची में। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं काम से भागता नहीं, पर यदि मैं अपने जीवन में बेकार नहीं होना चाहूं, तो मुझे एक बार और सभी के लिए चंगा होना जरूरी है। मेरे प्रिय ख्रिस्तों से दूर रहकर मैं शोधकाग्नि महसूस कर रहा हूं। हालांकि फादर लीबस चंगे नहीं हुए थे और एक असाध्य बीमारी के शिकार हो गए थे, जिससे उन्हें अब कभी ठीक होने की उम्मीद नहीं थी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रॉय, जो उनको देख रहे थे, उनके विचार अनुसार उनके जीवन की अवधि सिर्फ एक साल बची थी। इस बात को उनसे गुप्त रखा गया था और वे उम्मीद करते थे कि दार्जिलिंग में आराम करने से चमत्कार हो जाएगा। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबंस एवं छोटा नागपुर मिशन की शुरुआत पर एक चर्चा सुन रहे थे। इस पर हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, जो लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक भाई का कर्ज। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओ, एक समय था जब पिता को पुत्री के जन्म लेने पर खुशी नहीं होती थी। जन्म लेते ही उसका विवाह करने की चिंता होती थी, बेटी के नाम से ही खीज होती थी। लेकिन आज कारण भी बदले हैं और हालात भी। आज बेटियां घर की चार दीवारी में चूल्हे चौके तक ही सीमित नहीं हैं। पिता का झुकाव घर के चिराग से ज्यादा घर की रोशनी पर होने लगा है, यानी बेटी पर। बेटी पिता के लिए कोई बोझ बनकर नहीं रह गई है, बल्कि पिता की शान और पहचान का हिस्सा बन रही है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां बेटियों को अवसर मिले तो वे विजय का पताका न फहरा रही हों। ऐसे में बेटियां बेटे का बेहतर विकल्प साबित हो रही हैं। बेटियों के प्रति पिताओं के बढ़ते लगाव का कारण वर्तमान में बढ़ते बेटों से निराशा और बेटियों की तरक्की भी है। ऐसा नहीं है कि बेटे तरक्की नहीं कर रहे या वह किसी लायक नहीं, लेकिन बेटों की जीवन शैली, उनकी प्राथमिकताएं और जरूरतें आदि बदल गई हैं। वे अपने शौक और अपनी दुनिया तक ही सिमट कर रहना पसंद कर रहे हैं, जिसके कारण वे लापरवाह एवं गैर जिम्मेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। परिवार वालों को दिखने लगा है कि भविष्य में बेटों से कुछ खास उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। ऐसे में बेटियां न सिर्फ उम्मीद का सहारा नजर आती हैं, बल्कि पिता एवं घर परिवार को शान पहचान में भी इजाफा कर रही हैं। आज के नाटक का श्रवण कर आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है माइकल होजेस की लिखी नाटिका भाई का कर्ज।
पूनम, तुमने शिखा को उसकी फीस दे दी ना?
अरे हाँ, मैं तो उसे उसकी फीस देना ही भूल गई। आज कॉलेज से आएगी तो दे दूंगी।
जरूरी बातों पर तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। अरे क्या तुम्हें पता नहीं कि उसकी फीस कितनी जरूरी है?
कहा तो भूल गई थी, आज दे दूंगी, और क्या। अगर आज के बजाय उसकी फीस वो कल भर देगी तो कोई पहाड़ तो नहीं टूट जाएगा ना?
क्या बच्चों जैसी बातें करती हो पूनम।
बच्चों जैसी
अगर उसकी सभी सहेलियों ने अपनी अपनी फीस भर दी होगी तो क्या उसे नीचे नहीं देखना पड़ेगा?
उसमें उसकी नीचे देखने वाली बात कौन सी हो गई? और फिर लड़कों की तरह पढ़ लिख कर उसे कौन सा नौकरी करके हमें काम करवाना है? सभी लड़कियों की तरह जाना तो उसे भी है शादी करके अपने ससुराल ही।
तुम भी उन पुरानी औरतों की तरह बातें कर रही हो जो लड़की को केवल चौका बर्तन की सीमा में बांध कर रखती थी। अरे लड़की है तो क्या उसे पढ़ाने का हक नहीं है? उसे अनपढ़ रख कर क्या उसकी जिंदगी खराब कर दूं?
आप भी क्या बातें करते हैं, अब वो अनपढ़ कहाँ रही, ग्रेजुएट तो हो गई है, सब कुछ तो सीख चुकी है। अब और कितना पढ़ेगी लिखेगी?
तुम्हें क्या पता, आजकल की पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती। अरे अगर आगे वो और पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो ना, तुम्हारा क्या जाता है?
हाँ हाँ, मेरा क्या जाता है, पढ़ाओ उसे, खूब पढ़ाओ, पंडित बनाओ उसे, निहाल कर देगी वो। पता नहीं ये उसे इतना पढ़ा लिखा कर क्या करना चाहते हैं, और वो इतना पढ़ लिख कर करेगी भी क्या?
तुम क्या सोचती हो, मैं उसे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि पढ़ा लिखा कर उससे नौकरी कराऊंगा और बैठकर उसकी कमाई खाऊंगा?
अगर ऐसा चाहेंगे भी तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शादी करके तो शिखा अपने ससुराल चली ही जाएगी।
सबको अपनी तरह से मत समझा करो, मैं तुम्हारी तरह पैसों का लालची नहीं हूँ। मैं शिखा की कमाई खाने के लिए उसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि इसलिए उसे पढ़ा रहा हूँ कि शादी के बाद वह अपने पति पर निर्भर न रहे, अपने पैरों पर खड़ी हो सके, खड़ी।
अच्छा, और उसका पति उसकी कमाई जमा करते रहे?
तुम्हारी निगाह पैसों पर रहती है। अरे शादी के बाद अगर उसकी कमाई पर उसके पति का हक नहीं होगा तो क्या तुम्हारा हक होगा?
क्यों, तो क्या शिखा मेरी बेटी नहीं है?
क्यों नहीं है, जरूर है, लेकिन अगर शादी के बाद वो अपनी इच्छा से तुम्हें कुछ देना चाहे तो दे सकती है, लेकिन अच्छा। तुम्हारा उससे ये कहना मांगना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सब तुम्हारे दिमाग के दिवालियेपन को ही दर्शाता है।
हाँ हाँ, आपको तो मेरी बातें ऐसी ही लगेंगी। अरे कभी आपने मेरी बातों की तारीफ की है? कभी ये कहा है कि पूनम तू ठीक कहती है?
अरे अगर तुम ठीक कहोगी तो ठीक कहूंगा ना, और अगर गलत बात कहोगी तो क्या उसे भी ठीक कहूंगा? मेरी तारीफ नहीं करते? अरे तारीफ लायक काम भी तो करो।
अरे बाहर वालों की तो बड़ी तारीफ करते हो।
जैसा सामने वाले का गाना है ना, वैसा मेरा बजाना। सामने वाला सही बात करेगा तो सही कहूंगा।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, जितनी फिक्र आपको शिखा की रहती है उतनी फिक्र आपने अपने बेटे पंकज की क्यों नहीं करी? शिखा की तो एक एक चीज की फिक्र करते हो आप।
तुम जानना चाहती हो ना कि मैं पंकज की फिक्र क्यों नहीं करता? तो सुनो, पंकज की फिक्र इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि तुम उसकी फिक्र बहुत ज्यादा करती हो।
मैंने उसकी ऐसी कौन सी फिक्र कर ली है? क्या हर माँ अपने बेटे की फिक्र नहीं करती? और अगर मैंने फिक्र कर ली तो कौन सा तूफान आ गया?
तूफान ही तो आ गया है क्योंकि तुम अपनी बेटी की नहीं बेटे की फिक्र करती हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि पंकज तुम्हारा लाडला बेटा तुम्हें खूब कमा कर देगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं उसके भरोसे बिल्कुल नहीं हूँ।
और जब एक दिन वो आपको संभालेगा ना, तब उस दिन आप खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे, देखना मेरी बात को।
जब ऐसा दिन आएगा ही नहीं तो फिर शर्मिंदा होने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मैं नहीं देखूंगा, ये तुम देखना।
अरे
तुम
बेटा, इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है डॉक्टरी की, और एक एक ये है कि कभी उसकी कोई तारीफ नहीं करते बस।
सुनकर खुशी हुई कि तुम्हें अपने और अपने बेटे के लिए मेरी तारीफ की बहुत जरूरत है।
अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं आपकी तारीफ पाने के लिए मरी जा रही हूँ, समझे?
तुमने जो कहा उसका तो यही मतलब है, बाकी तो सब शब्दों का हेर फेर है।
अरे मैं खूब समझती हूँ आप, हम माँ बेटे को जो बिल्कुल नहीं चाहते वो सब समझती हूँ मैं।
ये तुम्हारी गलत फहमी है, उसे दूर कर लो तो अच्छा है। अगर मैं तुम्हें नहीं चाहता तो क्या मैं तुम्हारे साथ इस घर में रहता? और अगर पंकज को नहीं चाहता तो क्या दुकान घाटे में जाने के बाद भी उसकी MBBS की पढ़ाई के लिए कर्ज लेता मैं?
तो वो तो कोई भी बाप करता है, बाप का यही तो फर्ज होता है।
हाँ, केवल बाप का ही तो फर्ज होता है, बेटे का तो कोई फर्ज होता ही नहीं।
मेरा बेटा अब तक पास होता आया है, ये उसका आखिरी साल है, क्या अच्छा पढ़कर वो अपना फर्ज नहीं निभा रहा है?
कौन सा अच्छा पढ़ रहा है? एवरेज स्टूडेंट है वो, एवरेज। अगर इतना ही अच्छा पढ़ रहा है तो फिर कभी गोल्ड मेडल क्यों नहीं लाता वो?
अब इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं तो गोल्ड मेडल सबको कैसे मिल सकता है? वो तो किसी एक को ही मिलता है ना?
वही तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि तुम्हारा लाडला ही वही लड़का क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे आए दिन शराब की पार्टियां उड़ाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। तुम माँ बेटे क्या समझते हो, मैं कुछ नहीं जानता?
ये आप क्या कह रहे हैं, पंकज और शराब?
हाँ
हाँ, उनकी पार्टियाँ जरूर होती हैं, लेकिन आपसे किसने कह दिया कि शराब की ही पार्टी होती है उसकी?
तो तुम क्या समझती हो कि मुझे कुछ पता नहीं है? मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारे लाडले की पीने खाने की बैठक कहाँ जमती है।
अब जवान लड़के हैं, कहीं मिलकर उठते बैठते होंगे बार बार।
आज इतना पक्ष तुमने अपनी बेटी का लिया होता। तुम्हें पता है दुकान आजकल ठीक नहीं चल रही, फिर भी उसकी पढ़ाई के लिए मैंने कर्ज लिया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अपने किताबों के खर्चे और फीस को वो मुझे बड़ा चढ़ाकर बताए और पार्टी के लिए मुझसे पैसे।
अब जवान लड़के हैं तो ये सब तो करते ही हैं। उसे ये वो कर
नहीं, उसे ये सिखा दो कि जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर फैलाए जाते हैं। मुझे तो पता था कि पंकज शादी के बाद यूं अलग हो जाएगा, इसलिए मैं उससे कभी कोई आशा नहीं करता था। यही कारण है कि उसके अलगाव का मुझे ज्यादा दुख नहीं है। चिंता तो बस ये है कि घर चलाने के साथ साथ कर्ज भी चुकाना है और बेटी की शादी भी करना है।
सचमुच चिंता की तो बात ही है।
चिंता की कोई बात नहीं है पापा, अभी आपकी बेटी है ना, मैंने सब सुन लिया है। आपका कर्ज भी चुकेगा, घर भी चलेगा और मेरी शादी भी हो जाएगी।
मगर कैसे बेटी?
अरे विलास, अंदर आओ ना।
नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी।
बैठो बेटा।
नमस्ते, बैठो बेटा।
विलास, ये मेरे मम्मी पापा हैं, और ये विलास है, मेरे साथ बैंक में ही काम करते हैं। पापा, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं।
कहो बेटा।
अंकल, मैं शिखा से शादी करना चाहता हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं जब छोटा था तब पापा गुजर गए। माँ सरकारी टीचर थी, उन्होंने ही बड़ा किया। साल भर पहले एक एक्सीडेंट में वो भी गुजर गई, वरना मेरी बात करने वही आती।
अगर शिखा तुम्हें पसंद करती है तो हमें कोई एतराज नहीं है बेटा।
हाँ बेटा, हमें भी इसकी शादी की बड़ी चिंता थी।
शिखा का कहना है कि शादी के बाद भी वो आपका लिया यानी शिखा के भाई का कर्ज चुकाती रहेगी।
ये तुम क्या कह रहे हो बेटा?
नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है।
आजकल सब ठीक ही ठीक है अंकल, और अगर आप लोग चाहेंगे तो हम दोनों शादी के बाद आप लोगों के साथ ही रह जाएंगे। आप दोनों के रूप में मुझे माँ बाप मिल जाएंगे,
और तुम्हारे रूप में हमें बेटा मिल जाएगा। क्यों पूनम?
हमें तो कोई आपत्ति नहीं है।
अब कहो पूनम, तुम्हारा बेटा पंकज लायक बेटा है या मेरी बेटी शिखा लायक बेटी है?
सचमुच शिखा मेरी बच्ची।
भाई का कर्ज। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इस नाटिका के कलाकार थे अर्पना सिंह, प्राची जैन, पीटर जमरा और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।